एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दिमाग की बत्ती जला भी सकता है और थोड़ा सिर घुमा भी सकता है।
हाँ, विरोधाभास, पैराडॉक्स।
एग्जैक्टली, वो स्थितियां जहां हमारी सीधी साधी लगने वाली सोच हमें अजीबो गरीब नतीजों पर पहुंचा देती है
और इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगी मार्गेट कुवंजो की किताब, नामी है पैराडॉक्स।
हाँ, और ये किताब सिर्फ दिमागी पहेलियों की लिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। ये समझाती है कि कैसे ये विरोधाभास हमारी भाषा, हमारी तर्क शक्ति और यहाँ तक कि दुनिया को समझने के हमारे तरीकों की सीमाओं को दिखाते हैं।
बिल्कुल, और आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है समझना, जहाँ हर तरफ इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने तर्क है। सही बात है, कब हमारी अपनी सोच ही हमें धोखा दे सकती है, ये जानना जरूरी है।
तो चलिए फिर इस सोच को चुनौती देने वाले सफर पर चलते हैं, देखते हैं ये विरोधाभास हमें क्या सिखा सकते हैं।
बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं लेखिका से, मार्गरेट कुवंजो।
हाँ, बताइए इनके बारे में।
वे लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी ब्रुकलिन में दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हैं, फिलोसफी पढ़ाती हैं।
अच्छा, और उनकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब सिर्फ फिलोसफी या कुछ और भी?
नहीं नहीं फिलोसफी में भी उनकी खासियत है तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, भाषा का दर्शन और मेटाफिजिक्स मतलब दुनिया की बनावट से जुड़े सवाल।
ओ, काफी गंभीर विषय हैं ये तो।
हैं तो, पर उनकी खासियत यही है कि वो इनमें माहिर हैं और साथ ही वे ज्ञान कैसे काम करता है मतलब एपिस्टेमोलॉजी और हमारा दिमाग कैसे सोचता है यानी कॉग्निटिव साइंस, इसमें भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं।
तो मतलब काफी वाइड रेंज है इनकी स्टडी का।
हाँ, और सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो इन भारी भरकम विषयों को ना बड़े ही सहज तरीके से समझाती हैं।
अच्छा, मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाती है।
हाँ, अकेडमिक गहराई भी बनी रहती है पर भाषा ऐसी कि आम पाठक भी समझ जाए। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि विरोधाभास क्या है बल्कि ये भी कि उनका ढांचा कैसा है, उनका असली मतलब, उनका दार्शनिक महत्व क्या है।
ये तो बढ़िया है, कई बार अकेडमिक बातें आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती।
बिल्कुल, और उनका नजरिया भी इंटरडिसिप्लिनरी है, वो लॉजिक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इन सबको मिलाकर देखती हैं। वो पूछती हैं कि जो दिमागी उलझने हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारी बातचीत से, हमारे ज्ञान से कैसे जुड़ी हैं। ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है उनके लिए।
समझ गया, तो अब आते हैं किताब पर, पैराडॉक्स। ये किताब असल में है किस बारे में?
आसान शब्दों में कहें तो ये उन अजीब सिचुएशंस के बारे में है जहां बिल्कुल सही लगने वाली दलीलें हमें ऐसे नतीजों पर ले जाती हैं जो या तो खुद को काटते हैं या फिर बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं।
ओके, तो किताब का मुख्य तर्क क्या है, मतलब वो कहना क्या चाहती हैं इन विरोधाभासों के जरिए?
देखिए, किताब का मेन आइडिया ये है कि विरोधाभास हमारी सोच की कोई नाकामी या गलती नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो एक तरह के संकेतक है, इशारे हैं।
किस तरफ?
हमारी सोच, हमारी भाषा और दुनिया को समझने के हमारे तरीकों में जो छुपी हुई सीमाएं हैं, जो जटिलताएं हैं, उनकी तरफ ध्यान खींचते हैं। कुवंजो इन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मानती बल्कि एक मौका मानती हैं, एक खिड़की जिससे हम अपनी सोच और बातचीत के बुनियादी ढांचे को बेहतर समझ सकें।
ये दिलचस्प नजरिया है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि समझने का एक टूल।
हाँ बिल्कुल, और किताब हमें एक तरह की यात्रा पर ले जाती है, पुराने यूनानी सवालों से लेकर,
जैसे जीनो वगैरह।
हाँ, जीनो के पैराडॉक्स से लेकर आज के गणित और कंप्यूटर साइंस की उलझनों तक। ये दिखाती है कि कैसे ये विरोधाभास हमारी फॉर्मल लॉजिक और रोजमर्रा की भाषा के बीच,
अच्छा,
गणित की सटीकता और हमारी सहज इंट्यूटिव समझ के बीच के तनाव को सामने लाते हैं।
तो किताब का लक्ष्य सिर्फ विरोधाभासों को सुलझाना नहीं है?
नहीं, सिर्फ सुलझाना या रहस्य खोलना नहीं बल्कि ये दिखाना है कि तर्क, भाषा और ज्ञान की हमारी समझ में इनका कितना गहरा महत्व है। किताब एक तरह से पूछती है ये विरोधाभास हमें सच, ज्ञान और सही सोच की हदों के बारे में क्या सिखाते हैं।
ये समझने की कोशिश है कि हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं।
एग्जैक्टली।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये विरोधाभास या पैराडॉक्स आखिर है क्या चीज, थोड़ा और साफ करें इसे।
देखिए, ये एक ऐसा तर्क होता है जिसमें शुरुआत बिल्कुल सही लगने वाली बातों से होती है, जिन्हें हम प्रेमिसेस कहते हैं।
ठीक है।
फिर वो तर्क एक बिल्कुल वैलिड, सही लगने वाले तरीके से आगे बढ़ता है, रीजनिंग सही लगती है। लेकिन उसका नतीजा, वो या तो खुद का खंडन करता है या एकदम बेतुका होता है, या फिर ऐसा जिसे मानना नामुमकिन लगे।
अच्छा, तो ये महज कोई गलती या पहेली नहीं है, उससे कुछ गहरा है।
हाँ, ये उससे ज्यादा गहरा है। इसे समझने के लिए मशहूर दार्शनिक हुए हैं W.V.O. क्विन।
क्विन, हाँ।
उन्होंने इन्हें मोटे तौर पर तीन तरह का बताया था। पहला है वेरिडिकल।
वेरिडिकल,
हाँ, इनका नतीजा अजीब लगता है पर असल में सच होता है।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे वो बर्थडे पैराडॉक्स कि सिर्फ 23 लोगों के ग्रुप में,
हाँ हाँ ये सुना है,
50% से ज्यादा चांस है कि कम से कम दो लोगों का जन्मदिन एक ही दिन हो। सुनने में बिल्कुल अजीब है पर गणित यही कहता है, ये सच है।
हाँ, ये तो हमारी सहज बुद्धि को, इंट्यूशन को झटका देता है। अच्छा, और दूसरी तरह?
दूसरी तरह के हैं फॉल्सिडिकल।
फॉल्सिडिकल,
हाँ, ये सही लगते हैं पर उनमें कोई छुपी हुई गलती होती है।
मतलब तर्क में या शुरुआत में कोई झोल होता है।
हाँ बिल्कुल, जैसे जीनों के कुछ पुराने विरोधाभास, उनमें शायद अनंत को लेकर कोई गलत धारणा हो सकती है। इनका हल उस गलती को ढूंढना होता है।
समझ गया। और तीसरी तरह आपने कहा था वो सबसे गहरे होते हैं।
हाँ, एंटोनॉमीज, ये सबसे गहरे और सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करने वाले होते हैं।
क्यों, ऐसा क्या है इनमें?
क्योंकि ये हमारी बुनियादी मान्यताओं, हमारी भाषा या हमारे सोचने के सिस्टम में ही किसी असली गड़बड़ी, किसी असली दोष की तरफ इशारा करते हैं।
ओह,
जैसे कि लायर पैराडॉक्स, इन्हें सुलझाने के लिए अक्सर हमें अपनी सोच के पूरे तरीके को ही बदलना पड़ता है। बड़े वैचारिक बदलाव की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, तो चलिए इसी लायर पैराडॉक्स पर बात करते हैं, ये बहुत मशहूर है।
हाँ, सबसे प्रसिद्ध शायद वो वाक्य, ये कथन झूठा है। अब सोचिए, अगर ये वाक्य सच है तो इसका मतलब है कि ये झूठा होना चाहिए, क्योंकि ये यही कह रहा है।
ठीक।
और अगर ये वाक्य झूठा है तो इसका मतलब है कि ये कथन झूठा है वाली बात झूठी है, यानी ये कथन सच होना चाहिए।
अरे बाप रे, मतलब ये सच तभी हो सकता है जब ये झूठा हो, और झूठा तभी जब ये सच हो। ये तो दिमाग घुमा देता है,
है ना? फंस गए ना? ये दिखाता है कि भाषा जब खुद के बारे में बात करती है, जिसे आत्म संदर्भ या सेल्फ रेफरेंस कहते हैं, तो कैसे उलझ सकती है।
ये सच का मतलब क्या है, इस पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है।
बिल्कुल, इसका एक समाधान सुझाया गया था, अल्फ्रेड टार्स्की ने दिया था। भाषाओं का एक पदानुक्रम, एक हायरार्की।
हायरार्की कैसे?
मतलब एक भाषा जिसमें हम दुनिया के बारे में बात करते हैं उसे ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहा, और एक उससे ऊंचे स्तर की भाषा मेटा भाषा, जिसमें हम पहली भाषा के वाक्यों के सच या झूठ होने की बात कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे गेम खेलते हुए आप गेम के नियमों पर सवाल नहीं उठाते, वो गेम से बाहर तय होते हैं, कुछ वैसा?
हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ये औपचारिक सिस्टम जैसे गणित या कंप्यूटर लॉजिक में तो काम करता है, पर हमारी रोजमर्रा की भाषा, वो इतनी सीधी, इतनी लेयर्ड नहीं होती, उसमें ये भेद करना मुश्किल है।
तो मतलब ये आत्म संदर्भ एक तरह की दोधारी तलवार है।
बिल्कुल, ये हमें गहरे विचार सोचने की ताकत देता है, पर साथ ही ऐसी तार्किक गांठें भी पैदा कर देता है जिनसे निकलना मुश्किल हो।
दिलचस्प। अब एक और तरह की उलझन देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की भाषा से जुड़ी है।
हाँ,
आपने जिक्र किया था सोराइटिस पैराडॉक्स का।
हाँ, सोराइटिस पैराडॉक्स यानी ढेर का विरोधाभास।
ढेर का विरोधाभास, ये कैसे काम करता है?
तर्क बड़ा सीधा है। मान लीजिए आपके पास गेहूं का एक दाना है, क्या वो ढेर है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, अब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो ढेर नहीं है, तो उसमें सिर्फ एक दाना और मिला देने से क्या वो ढेर बन जाएगा?
नहीं, एक दाने से क्या फर्क पड़ेगा।
सही, लेकिन अगर आप यही लॉजिक लगाते जाएं, एक दाना ढेर नहीं तो दो भी नहीं तो तीन भी नहीं, एक एक करके दाने मिलाते जाएं, तो आप कभी ढेर बना ही नहीं पाएंगे।
अरे हाँ, ये तो अजीब बात है, जबकि असल में तो कुछ दानों के बाद हम उसे ढेर कहने लगते हैं।
बिल्कुल, यही विरोधाभास है, और यही चीज सिर्फ ढेर पर नहीं, अनगिनत धुंधले, अस्पष्ट यानी वेग शब्दों पर लागू होती है, जैसे लंबा, गंजा, अमीर, बूढ़ा।
हाँ, कोई इंसान कब गंजा हो में शुरू होता है? एक बाल गिरने से, 10 से, 100 से, कोई साफ लाइन तो है नहीं।
एग्जैक्टली, ये क्लासिकल लॉजिक के एक बुनियादी उसूल को चुनौती देता है, द्विमूल्यता का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ बाइवैलेंस।
वो क्या है?
वो सिद्धांत कहता है कि हर बयान या तो पूरी तरह सच है या पूरी तरह झूठ, बीच का कुछ नहीं। पर गंजा या ढेर जैसे शब्द इस नियम को तोड़ते लगते हैं।
सही बात है, ये तो न पूरी तरह सच है न पूरी तरह झूठ किसी खास पॉइंट पर।
हाँ, इसके कई दार्शनिक जवाब देने की कोशिश की गई है। जैसे कुछ कहते हैं कि सीमा तो है पर हमें पता नहीं कहाँ है। कुछ कहते हैं कि सच की डिग्री होती है, फजी लॉजिक।
फजी लॉजिक
मतलब कोई चीज 60% सच हो सकती है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिखाता है कि हमारी भाषा स्वाभाविक रूप से सटीक नहीं है, और क्लासिकल लॉजिक जो हाँ या ना में सोचता है वो हमेशा हमारी दुनिया का सही वर्णन करने के लिए काफी नहीं होता।
ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारी भाषा ही विरोधाभासी स्थितियां पैदा कर सकती है अपनी अस्पष्टता की वजह से।
बिल्कुल, हमारी भाषा का स्वभाव ही ऐसा है। अब एक और कैटेगरी देखते हैं, तर्कसंगतता यानी रैशनैलिटी और फैसले लेने से जुड़े विरोधाभास।
अच्छा,
जैसे
जैसे
कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा।
हाँ, ये तो बहुत फेमस है। दो कैदी, अलग अलग पूछताछ होती है।
सही, दोनों को ऑफर मिलता है, अगर दोनों चुप रहें तो दोनों को थोड़ी थोड़ी सजा मिलेगी, मान लीजिए 1-1 साल।
ठीक।
अगर एक ने गवाही दे दी दूसरे के खिलाफ और दूसरा चुप रहा तो गवाही देने वाला आजाद हो जाएगा और चुप रहने वाले को भारी सजा मिलेगी, मान लीजिए 10 साल।
ओके।
और अगर दोनों ने गवाही दे दी, अगर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे दी तो दोनों को बीच की सजा मिलेगी, मान लीजिए 5-5 साल। तो अब अगर मैं एक कैदी हूं तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है?
सोचिए।
अगर दूसरा कैदी चुप रहता है तो आपके लिए गवाही देना बेहतर है, आप आजाद हो जाएंगे बजाय 1 साल जेल जाने के।
सही।
और अगर दूसरा कैदी गवाही देता है तब भी आपके लिए गवाही देना ही बेहतर है, आपको 5 साल की सजा मिलेगी बजाय 10 साल के।
हाँ यार, ये तो सही है। मतलब चाहे दूसरा कुछ भी करे, मेरे लिए गवाही देना ही समझदारी का काम है।
बिल्कुल, यही व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत या रैशनल सोच लगती है अगर आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन
लेकिन
क्या मुश्किल ये है कि दूसरा कैदी भी तो बिल्कुल यही सोचेगा, वो भी तो रैशनल है।
ओहो हाँ, वो भी यही सोचेगा कि उसके लिए गवाही देना ही बेहतर है।
और जब दोनों समझदारी से अपना अपना फायदा देखकर गवाही दे देते हैं तो नतीजा क्या होता है? दोनों को 5-5 साल की सजा,
जबकि अगर दोनों चुप रहते तो सिर्फ 1-1 साल की होती।
एग्जैक्टली, यानी जो व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत लगता है जब सब वही करते हैं तो नतीजा सबके लिए बुरा होता है, उस स्थिति से जिसमें वे सहयोग करते।
ये तो कमाल है। मतलब व्यक्तिगत तर्कसंगतता और सामूहिक भलाई में टकराव हो सकता है। ये तो असल जिंदगी में बहुत जगह दिखता होगा।
निश्चित रूप से, व्यापार में कंपटीशन, देशों के बीच हथियारों की होड़, पर्यावरण प्रदूषण, ये दिखाता है कि सहयोग, कोऑपरेशन करना इतना मुश्किल क्यों हो सकता है। और ये भी कि तर्कसंगत होने का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता।
इसने तो सोचने पे मजबूर कर दिया। तो इन सब दिलचस्प उदाहरणों से किताब के मुताबिक कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? मुख्य विषय क्या है?
पहला तो यही, जैसा हमने बात की, कि ये विरोधाभास हमारी सोच के लिए एक तरह के डायग्नोस्टिक टूल है।
डायग्नोस्टिक टूल?
हाँ,
मतलब चेकअप जैसा।
हाँ, ये बताते हैं कि हमारे सोचने के सिस्टम में कहाँ तनाव है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ कोई छुपी हुई धारणा गड़बड़ कर रही है।
अच्छा, और
दूसरा ये कि ये तार्किक मुश्किलें, ये संघर्ष असल में प्रोडक्टिव हो सकता है, फायदेमंद।
कैसे?
इतिहास गवाह है, इन्हीं विरोधाभासों ने लॉजिक, गणित, फिलॉसफी में नई सोच और बड़े बदलावों को जन्म दिया है। रसल के पैराडॉक्स ने सेट थ्योरी को नई दिशा दी, ज़ेनो के सवालों ने कैलकुलस के विकास में मदद की, अनंत को समझने में मदद की।
हाँ, ये बात तो है, ये सोचने पर मजबूर करते हैं।
तीसरा सबक ये है कि नियमों और फॉर्मूला की औपचारिकता की भी एक सीमा होती है।
मतलब
कोई भी लॉजिकल सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारी जटिल भाषा और सोच की हर बारीकी को नहीं पकड़ सकता। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। सो राइटर्स पैराडॉक्स यही तो दिखाता है कि ढेर का मतलब संदर्भ पर निर्भर करता है।
सही कहा। और चौथा पॉइंट?
चौथा, जैसा हमने लायर पैराडॉक्स में देखा, आत्म संदर्भ, सेल्फ रेफरेंस, खुद के बारे में बात करना।
हाँ, वो दूधारी तलवार वाली बात।
बिल्कुल, ये हमें ऊंचे स्तर की सोच, मेटा थिंकिंग की क्षमता देता है, लेकिन सिस्टमैटिकली विरोधाभास भी पैदा करता है।
और आखिरी, शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक,
बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
अच्छा, वो कैसे?
ये विरोधाभास हमें दिखाते हैं कि कोई भी नजरिया, कोई भी सोचने का तरीका परफेक्ट नहीं है, सबकी अपनी सीमाएं हैं। तो हमें अपने ज्ञान और तर्क पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए।
ये बहुत जरूरी सबक है। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी यादगार पंक्तियां या विचार हैं जो इन बातों का सार पकड़ते हों?
हाँ, कई हैं। कुछ को अगर हम अपने शब्दों में कहें तो
बताइए।
एक तो ये है कि विरोधाभास तर्क की हार नहीं, बल्कि एक खोज का पल है। यह हमारी सोच में छुपी किसी गड़बड़ धारणा को उजागर करता है और हमें अपनी बुनियादी मान्यताओं का सामना करने पर मजबूर करता है।
वाह, मतलब दिक्कत विरोधाभास में नहीं, हमारी समझ में है। विरोधाभास तो बस आईना दिखाता है। बहुत खूब।
बिल्कुल। एक और लायर पैराडॉक्स से जुड़ा हुआ, जब भाषा को अपनी ही सच्चाई पर टिप्पणी करने की छूट मिलती है तो वो खुद को ऐसी तार के गांठ में बांध सकती है जिससे बाहरी नियमों के बिना निकलना नामुमकिन हो जाता है।
ये सेल्फ रेफरेंस की ताकत और उसके जोखिम को साफ दिखाता है। और ज़ीनो के पैराडॉक्स के बारे में एक दिलचस्प बात, ज़ीनो के गति के विरोधाभासों का पूरी तरह समाधान सदियों बाद कैलकुलस के आविष्कार तक नहीं हुआ। ये दिखाता है कि एक विरोधाभास हमारे ज्ञान में इतने गहरे गैप की ओर इशारा कर सकता है कि इसे भरने के लिए किसी दूसरे फील्ड में क्रांति की जरूरत पड़ जाए।
यानी ये विरोधाभास लंबे समय तक असर डाल सकते हैं और प्रगति को ड्राइव कर सकते हैं।
हाँ, और कैदी की दुविधा जैसे विरोधाभासों से ये सबक, समझदारी या तर्कसंगतता कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। तर्कसंगत विकल्प के अलग अलग सिद्धांत हमें बिल्कुल अलग नतीजों की ओर ले जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि सबसे अच्छा फैसला कैसे लें, इस बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है। ये तर्कसंगतता की जटिलता पर जोर देता है। ये सब तो बहुत दिलचस्प है, दिमाग खोलने वाला है, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा है? क्या इन दिमागी कसरतों का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है?
हाँ हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा तो ये है कि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करता है।
कैसे?
जब हम इन विरोधाभासों को समझने की कोशिश करते हैं, इनके लॉजिक को परखते हैं, तो हम रोजमर्रा की बहस में, चाहे वो राजनीति पर हो, किसी विज्ञापन के दावे पर या ऑफिस की मीटिंग में, उनमें छुपी हुई धारणाओं, अजम्पशंस और तार्किक कमजोरियों को बेहतर पहचान पाते हैं। हम ज्यादा सवाल पूछना सीखते हैं।
मतलब हम आसानी से किसी की बात मान नहीं लेते, थोड़ा शक करना सीखते हैं।
हाँ, एक स्वस्थ शक। और ये हमें बौद्धिक रूप से विनम्र और खुले विचारों वाला बनाता है। जब हम देखते हैं कि हमारी अपनी सहज बुद्धि, हमारा कॉमन सेंस भी हमें धोखा दे सकता है, तो हम नए विचारों को सुनने और अपनी गलतियां मानने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ईगो कम होता है थोड़ा।
ये तो बहुत जरूरी है। और वो ढेर वाला विरोधाभास, सोराइटीज, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज?
बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि अस्पष्टता, वेगनेस कितनी खतरनाक हो सकती है। जब हम कोई समझौता लिख रहे हों या कोई नियम बना रहे हों या बस किसी से बात कर रहे हों, तो शब्दों को लेकर कितना सावधान रहना चाहिए।
हाँ, थोड़ा, ज्यादा, जल्दी, उचित, इन शब्दों के मतलब कितने अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए।
सही कहा। ये स्पष्ट परिभाषाओं और सीमाओं की जरूरत पर जोर देता है।
और कैदी की दुविधा जैसे मॉडल,
वो हमें असल दुनिया की रणनीतिक स्थितियों को समझने में मदद करते हैं। व्यापार में मोलभाव, ऑफिस की पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यहाँ तक कि परिवार में भी। ये हमें समझाते हैं कि क्यों लोग वैसा बर्ताव करते हैं जैसा वे करते हैं, और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है या टकराव क्यों होता है।
ये तो एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं सोचने के लिए।
हाँ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये सोच काम आ सकती है। अगर किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंस जाएं जो सुलझ ही नहीं रही, तो शायद उसे एक विरोधाभास की तरह देखें।
मतलब
शायद हम किसी गलत धारणा को लेकर चल रहे हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। उस धारणा को चुनौती देने से शायद नए समाधान का रास्ता खुल जाए। ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकता है।
और पर्सनल लेवल पर?
पर्सनल लेवल पर ये हमें जिंदगी की अनिश्चितता और विरोधाभासों को झेलने की ताकत देता है। हर चीज हमेशा साफ, लॉजिकल, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, और ये ठीक है। ये हमें दिमागी तौर पर ज्यादा लचीला, ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है।
तो कुल मिलाकर मार्गरेट क्वोंजो की किताब पैराडॉक्स से मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमें विरोधाभासों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गले लगाना सीखना चाहिए।
हाँ,
ये हमारी सोच के दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी गहराई और जटिलता के सबूत हैं। सच तो यह है कि विरोधाभास पैदा करने की क्षमता शायद हमारी विकसित सोच का ही एक लक्षण है, नाकामी का नहीं।
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। विरोधाभासों के साथ जीना सीखना, उनके साथ प्रोडक्टिवली डील करना शायद आज की जटिल दुनिया में एक बहुत जरूरी हुनर है। उनसे जूझने की कोशिश, भले ही हम उन्हें पूरी तरह सुलझा ना पाएं, अपने आप में दिमाग की बेहतरीन कसरत है। ये हमारी तर्क शक्ति को मजबूत करती है और हमारी समझ का दायरा बढ़ाती है।
वो दीवारें नहीं बल्कि दरवाजे हैं।
बिल्कुल, गहरी समझ की ओर खुलने वाले दरवाजे। ज्ञान का रास्ता कोई सीधा सपाट हाईवे नहीं है जहां बस तथ्य जमा करते जाना है। ये तो एक यात्रा है जिसमें विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है और दुनिया को समझने के लिए लगातार बेहतर, ज्यादा परिष्कृत नजरिया बनाना पड़ता है।
बहुत खूब, ये एक बेहतरीन नोट है आज की चर्चा को समाप्त करने के लिए।
हाँ वाकई,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।